نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير دورہ قرآن 2024 ڈی کیو 2024 آج ہم اس میں سے پارہ نمبر 28 کریں گے قد سمع اللہ آج اللہ آپ کی دعائیں سننے والا ہے بہت ساری دعائیں کرنی ہیں آپ سب نے خاص طور پہ انہوں نے جو اس وقت مہاجرین کے درجے پہ ہوتے ہوئے مہاجرات ہیں یعنی نیا نیا قرآن آپ کی زندگیوں میں آ رہا ہے اور آپ کے گھروں میں آج کا پورا پارہ ان ساتھیوں کے نام ہے کہ جو دورہ قرآن میں سے قرآن کی خوبصورتیوں کو دیکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے وعدوں پہ یقین رکھتے ہوئے اپنے اپنے گھروں میں قرآن کو لے کر چلنے کی کوششوں میں ہیں اور خوف بھی ہے اور امید بھی ہے تو انشاءاللہ آج اس پارے پہ تو چلیں گے ہی لیکن ہمیشہ کی طرح پہلے ذرا سا پچھلے پارے کو دیکھیں آپ کہیں گے اس کی کیا ضرورت ہے تو پچھلا ہضم نہ ہو تو اگلا کھانا کھانے کو دل نہیں کرتا تو پارہ نمبر 27 جو کہ واقعی بہت بھرپور تھا سورت زاریات سے لے کر سورت حدید تک ہم نے اس میں جو سورت کی تھی اس سب کا تھیم ملا تھا وفروا الی اللہ بھاگ دوڑ دین کی نہیں کرو گے تو دنیا کی کرنی پڑے گی اللہ کے راستے میں نہیں بھاگو دوڑو گے تو شیطان تمہیں اپنے راستوں میں بھگائے گا اور دوڑائے گا تو بہتر نہیں کہ اسی کے پاس جاب کر لو جو تمہیں اچھی پے دیتا ہے زندگی میں آپ نے یہ اصول دیکھا ہوگا کہ جہاں سے اچھی پے ملے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے کیونکہ اس کے بعد پھر جگہ بناتے ہوئے وقت لگتا ہے پھر اسی طرح نہ ماننے کے سو بہانے مرد زازاں پہ کلام میں دل فریب بے اثر جن کو نہیں سننا ہوتا وہ نہیں سنتے ان کے پاس ایک سے ایک بہانہ ہے تم ان کے لیے دعا کر دیا کرو اور کبھی بھی کسی کے بارے میں بد گمان نہ ہو ان کو تو سننا ہی نہیں اور ان کو تو ماننا ہی نہیں ہے پھر منافق اور کفار کا نفسیاتی تجزیہ دیکھا ہم نے اصل میں اب یہ سارے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں احکامات نہیں ہیں شراب کا جوئے کا بے حیائی کا براہ راست تذکرہ نہیں ہے کیونکہ اب تو وہ ایمان کی طاقت چاہیے جس کے ذریعے سے پھر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا انسان کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے سمیت آپ سب کو یہ دے دے پھر شکوک و شبہات کے مریض لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ جب تک دل سے شک نہیں دور کریں گے تب تک کوئی کام نہیں ہوگا ایک لقمہ آپ ایسا منہ میں نہیں ڈال سکتے جس پہ آپ کو شک ہو کہ اس میں زہر ہے یہ مجھے بیمار کر دے گا تو پھر اللہ کی بات کتنی ہی سچی کیوں نہ ہو کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو لیکن سب سے پہلے خواہش اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے اور ہمارے ارد گرد والوں کے شکوک و شبہات دور کر دے اس سے متعلق پھر اس کے بعد فبئی آلائی ربکما تکذبان کی صورت میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مختلف رنگ دیکھے تھے اور اب ہمارے پاس انشاءاللہ تعالیٰ اس سارے کو پڑھتے ہوئے صحابہ کرام کا جو کردار ہے اسی پہ آج کے پارے کو لے کر چلیں گے صحابہ کون تھے سورت فتح میں ہم نے ان کا تعارف دیکھا کہ محمد رسول اللہ والذین آمنوا معہ وہ لوگ جو ان کے ساتھ رہے جن کو صحابی کہا گیا ان کی شان کیا تھی کہ وہ بھی اپنی جگہ ایک یونیک تھے تو صحابہ نے ہر چیز کو اللہ کے کھاتے میں ڈال دیا یہ جملہ آپ کے لیے نوٹ کیا ہے پچھلے پارے کے اندر سے ایک پن پوائنٹ تاکہ آج کا پارا آپ کو سمجھا بھی سکوں اور آپ سمجھ بھی سکیں صحابہ ہر چیز کو اللہ کے خانے میں ڈالتے چلے گئے اسی مزاج نے ان کو جوابی ضد اور عصبیت سے بچایا اور وہ اشتعال انگیزی کے مواقع پر بھی مشتعل نہیں ہوئے ابھی یہ مشکل لگ رہا ہے آپ کو جملہ بعد میں اس کو ہضم کر لیجئے گا حقیقت ہے کہ یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ لوگ آپ کو ستائیں نہ آپ کے پیارے خاندانی سطح پہ بھی آپ کو ستائیں گے اگر یا کوئی بات کہیں گے تو دل کرتا ہے کہ ان کا جواب پتھر سے دیں اور جب آپ یہ اللہ کا دین لے کر نکلیں گے پھر تو اچھے خاصے جھگڑے اور لڑائیاں ہونے کا ڈر ہے تو بس اللہ کے کھاتے میں ڈالتے جائیے والی ربی کا فصبر یہ ہے وہ چیز جو بندے کو سکون دیتی ہے کیونکہ اللہ کی معرفت کی قیمت دینی پڑتی ہے اور وہ آج ہم نے کیا سیکھی ہے اپنے آپ کی نفی سیلف نیگیشن بس خود کو نیگیٹو نیگیٹو کرتے جائیں انکلیوڈ ہی نہ کریں ایکسکلیوڈ کر دیں اپنے آپ کو کوئی پھر جو مرضی کہہ لے آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ کو کوئی پوچھے بھی نہ تو آپ کو غصہ نہیں آئے گا آپ پہ تنقید کر دے یا تعریف کر دے آپ کو برابر لگے گا پھر دوسری چیز ساری عبادات کا خلاصہ معرفت الہی یہ جملہ میں نے آپ کو کیوں لکھایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. یہ ہے خلاصہ. آپ کو مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے لیے پیدا کیا ہے. اور کل رات کے سیشن میں یہ پڑھا تھا کہ معرفت کے کورس کا کبھی سرٹیفکیٹ نہیں ملا. یہ موت کے لمحوں تک بھی بندے کو نہیں پتا ہوتا کہ ابھی آگے سفر کتنا ہے. آپ کوئی کورس شروع کرتے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے, ایون دورہ قرآن جس دن شروع کیا تھا ہمیں پتا تھا کہ انشاءاللہ یہ 28 اپریل کو پورا ہوگا, اور اللہ کی توفیق سے ہی پورا ہو بھی جائے گا اللہ نے چاہا تو. لیکن معرفت کے کورس کی آپ کوئی ٹائم ٹیبل, ڈیوریشن یا پلاننگ نہیں دے سکتے. اللہ نے اس چیز کو چھپا دیا ہے. ملک الموت کے آنے تک آپ کے میرے پاس یہ موقع ہوگا اور ہوتا ہے کہ ہم اس سفر میں مزید اور لکھ سکیں, اس پیپر میں نمبر لینے کی کوشش کریں, اور بس وہی ہمارا جنت کا مقام ہوگا. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بندہ مومن کو کہا جائے گا کہ پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو انشاءاللہ یہ علم کا سفر جو ہمارا چل رہا ہے اور اب ہماری زندگی تک چلے گا انشاءاللہ, یہ ہمیں معرفت الہی عطا کرے گا. اور یہی ہے ہر کورس کا اینڈ ریزلٹ, یہی ہے سرٹیفکیٹ. معرفت کے نتیجے میں زندگی عبادت اور بندگی بن جاتی ہے. یہ جملہ لکھ لیں, ہمیشہ سے ایک جملہ بولتے ہیں, زندگی بے بندگی شرمندگی. یہ کیسے ہوتا ہے؟ معرفت ملتی جائے گی, کھانا بھی عبادت, سونا بھی عبادت, جینا مرنا قل ان الصلاتی و نسکی والی کیفیت آپ کے لیے, پھر آپ کی پوری زندگی عبادت ہوگی. پھر آپ وہ نہیں کہیں گے اچھا چلو آج میں کچھ عبادت نہ کر لوں بڑی رات ہے, نہیں آپ یہ نہیں کہیں گے. آپ کا پورا وقت سنت کے مطابق ہوگا, آپ کا کھانا پینا جینا مرنا, اور حتیٰ کہ آپ خود ہی اللہ کے نبی کے مشن پہ چل کے اپنی زندگی کے لیے ایک بہترین کہہ لیجئے کہ نمونہ بنتے جائیں گے. پھر والدین اور بچوں کا کچھ معاملہ دیکھا تھا تو یہ جملہ لکھیے, والدین کی نیکیاں بچوں کے ساتھ بانٹی جا سکتی ہیں جیسے ورثہ ملتا ہے, لیکن اسلام میں ایک کا گناہ دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا. یعنی ماں باپ کے درجے بلند تھے, اللہ بچوں کو ان کی جگہ اوپر کر دے گا, لیکن ماں باپ گناہ گار ہیں پھر کیا کریں؟ کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں, اللہ ان کے اوپر بھی رحمتیں کریں جن کو اپنے ماں باپوں کی فکریں لگی ہوئی ہیں. تو یاد رکھیے کہ ماں باپ کے گناہوں کی وجہ سے بچوں کو جہنم میں نہیں کھینچا جائے گا, لیکن نیکیوں میں دوسروں کو شامل کیا جاتا ہے. یہ اللہ کا احسان ہے. اور یہاں ایک جملہ لکھ لے کہ ہم حسین ہو سکتے ہیں ماں باپ کی وجہ سے. ماں بھی پیاری باپ بھی پیارا, عموماً بچے ماں باپ سے مشابہت رکھتے ہیں, لیکن محسن بننے کے لیے ہمیں خود محنت کرنی پڑے گی. پھر دنیا کی بصیرت قیامت کے دن پل صراط کا نور بن جائے گی. ربنا اتمم لنا نورنا, آج بھی اس پارے کے اینڈ پہ بھی نور کی باتیں ہیں. 27 پارے میں سورت حدید میں بھی ہم نے پل صراط کو دیکھا. تو آج بصیرت کی روشنی سے جو مومن دیکھ لیتا نا, جس کو اتقوا فراست المومن کہا گیا حدیث میں, کہ مومن کی فراست سے ڈرا کرو, وہ اندر سے پڑھ لیتا ہے بندے کو, جھوٹ نہ بولا کرو اس کے سامنے, اس کو اندر تمہارا جھوٹ دکھ رہا ہے. وہ یہ نہیں کہ وہ غیب جانتا ہے, لیکن اللہ کی طرف سے ایک برہان ملتی ہے, تو وہی روشنی کل پل صراط کے اندھیروں کو روشنی میں بدلے گی. اب دل پہ ہاتھ رکھیے, 12 نمبر 28 میں آپ کو آپ کے رب نے 15 بار پکارنا ہے. آج تک کبھی قرآن پڑھتے ہوئے آپ نے یہ نہیں سوچا ہوگا کہ پارا 28 از یورز پارا. 15 آیتیں آؤٹ آف 89 آیات. اب مجھے توفیق دے کہ میں اس کو مانوں تو نوٹ کر لیجئے, سورت مجادلہ کی آیات 9, 11, 12, حشر کی 18, ممتحنہ کی 1, 10, 13, سورت صف کی 2, 10, 14, 2, 10, 14, سورت جمعہ کی 9, منافقون کی 9, تغابن کی 14, تحریم کی 6 اور 8 آیت. یہ ساری آیتیں یا ایھا الذین آمنوا کی ہے. اب ذرا سا امیجینیشن میں رہیے, ابھی نہیں دکھاتی آپ کو, پہلے یہ بتائیے کہ آج کے پارے کا کیا ٹاپک ہوگا, کیا ہونا چاہیے. گھر ٹوٹنے نہ پائے, گھر اور قرآن, یہ ہے پورا پارا. اس پارے کی خوبی پہلے ہی لکھ لیں, اس میں جتنی صورتیں ہیں نا, ہر صورت میں گھر کا ذکر ہے, شوہر بیوی کے تعلق کا ذکر ہے. کہیں شوہر بیوی کی خوشی کرتے ہوئے کوئی حلال کو حرام کر رہے ہیں, اور کہیں حاتم بن ابی بلتا ہیں جو بیوی بچوں کی محبت میں مکہ کے سرداروں کو خط لکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی آ رہے ہیں اپنا بچاؤ کر لو. یعنی انما اموالکم واولادکم فتنہ, کہیں کہا کہ بے شک تمہاری بیویاں تمہارے بچے دشمن ہیں تمہارے, ذرا ان سے بچتے بچاتے رہنا. تو پورے پارے میں میرے آپ کے گھر ہیں, دعا کیجئے اللہ ٹوٹتے گھروں کو جوڑ دے, دین کی وجہ سے اللہ گھر نہ توڑوائے, دین کو ایسا نہ ہم لے کر پیش کریں کہ ہمارے گھر ٹوٹنے لگیں. اور نصر من اللہ فتح قریب, आज इस बारे में सूरह सफ की वो आयत आ रही है जिस पे आपने पूरा महीना अल्हम्दुलिल्लाह इस तौरे कुरान में बात सुनी है। आज जब सूरह सफ पे पहुंचेंगे तो आप ये जान लेंगे कि नस्रु मिनल्लाही व फतहुन करीब से पीछे क्या बात हो रही थी जिस पे अल्लाह ने कहा, और इसके बाद क्या है। और यहाँ बता दो पूरे पारे का उमूद, उमूद कहते हैं पिलर को, सूरह सफ है जिसकी उम्मत मुस्लिमा को इस वक्त जरूरत है। मुझे है हुक्मे अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। हमारे जहन में जब भी हुक्म लफ्ज आता है तो एकदम गुस्सा, रो, इधर आओ, ये करो, वो करो, ये स्टाइल। और अजान की बात आती है तो मस्जिद है। आज हुक्मे अज़ां आपको मुझे अपने घरों में है, शौहर के साथ, बच्चों के साथ, घर के बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पैगाम कैसे शेयर करना है। बहुत सारी हिकमतें आज, और ये भी अभी बता दूं कि अगला पारा यानी 29वें पारे में उसका पार्ट 2 आएगा। चलिए, ईमान की ताकत चाहिए क्यों? अंसारुल्ला बनने के लिए, कान नहुम बुन जानु मरसूस के लिए, और लियुसखिरहुल्दीन कुल्लिही वलो करिहल काफिरून के लिए, और घरों के अंदर इस्लाम के दीन के पौधे को लगाने के लिए। अल्लाह ताला ये बड़े बड़े टारगेट्स हमारे पूरे फरमाए। आइए शुरू करते हैं। पारे का शुरू ही सूरत मुजादिला से है, इसको मुजादिला भी पढ़ सकते हैं और मुजादला भी पढ़ते हैं, दोनों ठीक हैं। 22 आयात है, 58 नंबर की सूरह है। इस सूरत का मरकजी मजमून मुसलमानों के घरेलू मामलात की इसलाह। आप कहेंगे ये कैसा कुरान मैं कर रही हूँ, मैंने तो सोचा था इसमें कोई बड़ी 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 बातें होंगी, मेरे तो इस कुरान में मेरा घर है सारा। इस सूरत का नजूल 5 हिजरी में हुआ सूरत अलाहज़ाब के बाद। हुदूदुल्लाह की पासदारी का ख्याल रखो। जुबान के एक बोल की कीमत 60 रोजे हैं, सोच के बोलना। जिब्त मौत, मुनाफिकीन के खुफिया प्रोपेगंडे थे। मेरा दिल तो बड़ा कर रहा होता है मैं सूरतों पे खूब बोलूं, और ये मेरा पैशन है। जिन लोगों ने भी सुना है ना, हमने सूरतों के खुलासे, पारों के खुलासे, खुलासे कुरान, फिर नज़मे कुरानी, क्या कुछ पढ़ा हुआ। ये सूरतें मुझे ऐसी लगती हैं जैसे फैमिली होती है ना। अब मैं इस वक्त आपको बताना चाह रही हूँ इस सूरत के साथ कि ये सूरत किस दौर में नाजिल हुई। एक तरफ हजरत आयशा सिद्दीका पे तोहमतें लग रही हैं, आपकी बीवी को तंग किया जा रहा है, दूसरी तरफ मारिया किबतिया के मामले में आपको सताया जा रहा है। अल्लाह ने एक औरत और मर्द का किस्सा बनाकर इंसानों को बता दिया कि नजवा इस्लामी मुआशरे को खोखला कर देती है, और हिजबुल्लाह की कामयाबी और हिजबुल शैतान की नाकामी की बिशारत है। इस सूरत के एंड पे ये आयतें आने वाली हैं। मुनाफिकीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हजरत जैनब के निकाह की वजह से प्रोपेगंडा कर रहे थे। ये सूरत बिल्कुल सूरत अलाहज़ाब के करीब दौर में नाजिल हुई, जब आपने अपने मुंह बले बेटे जैद की बीवी जो कि तलाक हुई उनसे, तो फिर उनसे निकाह किया, पूरे मुआशरे में बातें हो रही थी। आज अगर किसी दीनदार की कोई इज्जत उछालता है ना, आप ना उसमें एक एक तीली ना डालिएगा, आपने एक चिंगारी भी नहीं उठानी, क्योंकि ये हर दौर का शैतान का बोल रहा कि दीन वालों को बदनाम करो ताकि लोग दीन छोड़ दें। और तकरीबन 1 साल बाद सूरत नूर नाजिल हुई जिसमें हजरत आयशा पे तोहमत लगी। इस सूरत में तकाबुल वाली आयतों को नोट कर लें। युहादून का लफ्ज़ 2 दफ़ा अल्लाह के नबी के दुश्मनों के लिए आया है, आयत 5 में और 20 में। और ये हाद कौन सा होता है, ये आगे जहाँ आयत आएगी तो लिखाऊंगी इंशाल्लाह। इसका ऑपोजिट लफ्ज है युवादून। युहादून होता है बहुत ही नफरत करने वाला, हर हद को पार कर दे ना जो बंदा दुश्मनी में, उसके लिए लफ्ज आता है हद, युहाद, वमे युहाद दिल्ला, और इस तरह के लफ्ज भी आते हैं। और युवादून वुद से है, हद से ज्यादा मोहब्बत करना। तो रसूल से मोहब्बत करने वालों का इंजाम आयत 22 में। और इस सूरत की एक बड़ी खूबी लिखी है, यूनिक बात है, पहले और किसी सूरत में नहीं लिखाई। इसकी 2 आयतें मनसूख हैं, कौन सी, 12 और 13, 12 एंड 30। ये कुबूरी हुक्म था, इन बिटवीन लोगों की तरबियत के लिए कहा गया कि अल्लाह के नबी से बात से पहले सदका दिया करो, फिर बाद में वो हुक्म उठा लिया गया। चलिए, सूरह हदीद पिछले पारे के एंड पे थी और इस पारे के शुरू में मुजादिला है, दोनों का रब्त भी ले लेते हैं। हदीद में बाहर के दुश्मनों से जानी माली जिहाद करके अदलो इंसाफ की जरूरत को उजागर किया गया, और सूरत मुजादिला में अंदरूनी दुश्मन यानी मुनाफिकों को हिजबुल शैतान कहा गया। और याद रखिए कि इस सूरत में जो पैगाम है वही सूरत अलहज़ाब का था, वहाँ मुंह बोले बेटे की हुक्म को टच किया गया कि किसी के कहने से कोई अडॉप्टेड सन उसका सन नहीं हो जाता, इधर उसका ऑपोजिट है। क्या क्या अभी पढ़ने लगे हैं, जिहार का कानून है। जुमला लिखना चाहे तो लिख रहे हैं कि इंसानों के कहे से कुछ नहीं होता, रिश्ते वही जो अल्लाह ने बना दिए। इतने कच्चे रिश्ते नहीं है कैसे ही टूट जाएं। फिर इसमें लफ्ज नजवा आएगा, जिसका दूसरा नाम हम रखते हैं इज्तमाई गीबत। किसी भी इज्तमाई काम को दो लोगों का अकेले में डिस्कस करना, मीटिंग में नहीं बोलना, अकेले में बोलना, जो ग्रुप बना है उसमें नहीं लिखना, अलग से करना, इस्लाम को तोड़ने वाली चीज है। उस काम को, उस ऑर्गेनाइजेशन को और उस तहरीक को या उस मूवमेंट को नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से हमने इससे बचना है। फिर इसमें हिजबु शैतान की चार सिफात का जिक्र है। अल्लाह आपको मुझे उस पर गौर करके अपने अंदर लेने वाला बनाए। 17 से 20 तक आयतें, और हिजबुल्लाह की सात सिफात है सिर्फ एक आयत में 22 में। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इस पर अपना अमल चेक करें। तकमीले इनकलाब के लिए 3 महाज, ईमानी महाज, आयली यानी घरेलू महाज और अखलाकी महाज पर कामयाबी लाजिम है। यदि आसान जुमले बोल देती हूँ, ये तो किताबी जुमले है ना, जब तक उम्मत मुस्लिमा ईमानी तौर पर मजबूत नहीं होगी, खानदानी तौर पर मजबूत नहीं होगी और अखलाकी तौर पर मजबूत नहीं होगी, कामयाबी नहीं होगी। आप जिन मुल्कों में रहते हैं उनके लॉज को फॉलो करते हैं, छूटे वीजे लेकर आएंगे, तस्वीरें बदल कर पासपोर्ट पे आएंगे और वो कहते हैं आप हमारे मुल्क में खाना ना लाओ, छुपा छुपा जाएंगे, तब इस्लाम का बुरा नमूना बनेंगे। जहाँ शरीयत ना टूटती हो ना, ये शर्त है, वहाँ रूल्स एंड लॉज को फॉलो करना पड़ता है। और अल्लाह करे उम्मत मुस्लिमा में ये बातें आ जाए। आज आप देखते हैं कि मुमी तौर पर गोरों के बारे में ये बात मारूफ है कि वो कानून नहीं तोड़ते, जो कह दिया उसी के ऊपर स्टिक ऑन हो जाते हैं। अल्लाह हम सबको भी इसके ऊपर अमल की तौफीक दे। और जिहार का बयान है बीवी को माँ कह लेना, अंती अलैया कज़हरी उम्मी, ये लफ्ज़ थे अरबों में तलाक देने के एक तरीके में कि तू आज से मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह, यानी तेरी पुश्त मुझ पर हराम है। जैसे कभी देहातों में आपने लोगों को सुना होगा, तू मेरी आज से माँ बहन है, यानी शोहर ऐसे ही रह जाता बोलता है, तो उसको अल्लाह ने बुनियाद बनाकर एक औरत खोला, आम सी औरत थी। अगर वो ये मामला ना होती ना, ये तलाक का मौजू ना आता, तो उसका कुरान में हिस्सा भी नहीं डलना था। यहाँ से लिखना चाहे तो लिख लें, बाज मुसीबतें अल्लाह हमारे लिए इसलिए डालता है कि उसके बाद अल्लाह हमारा जिक्र खैर रख दे कि हमने उस पर ये सब्र किया और उसका अल्लाह ने हमें ये बदला दिया। पता क्या चलता है कि अल्लाह हर पुकारने वाले की और हर पुकारने वाली की दुआ सुनता है। तो आज से आप और मैं ये तो बिल्कुल नहीं कह सकेंगे कि अल्लाह औरतों की नहीं सुनता। चलिए, पूरी सूरत की तफसीर तो हो गई है, आइए जरा आप इस तर्जमे को पढ़ते हैं, उसके अंदर से आपको अब ज्यादा अच्छा समझ आएगा। अगर ये सब कुछ मैं सूरत के बाद दूं ना, तो आप तर्जमे को बिल्कुल इंजॉय नहीं करेंगे। अब ये छोटे छोटे जो पॉइंटर दिए ना, आप इसकी रोशनी में देखेंगे तो तर्जमे से आपको फौरन रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1 आयत 1 से 6 है, जिहार का कफारा। और एक बड़ी बात एंड पे बता दो इस सूरत की, या अभी बता दूं? चलिए आपका टेस्ट है, तर्जुमा गौर से सुनिए, एंड पे बताऊंगी मैं। चलिए, कद समे अल्लाहु कौल अल्लती तुजादिलु कफी ज़ौजिहा, यकीनन अल्लाह ताला ने उस औरत की बात सुन ली जो आपसे अपने शौहर के बारे में तकरार कर रही थी और अल्लाह के आगे शिकायत कर रही थी। अल्लाह ताला तुम दोनों के सवाल जवाब सुन रहा था, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला देखने वाला है। तुम में से जो लोग अपनी बीवियों से जिहार करते हैं, यानी इन्हें माँ कह बैठते हैं, वो दरअसल इनकी माए नहीं बन जाती, इनकी माए तो वही हैं जिनके बतन से वो पैदा हुए। यकीनन ये लोग एक नामाकूल और झूठी बात कहते हैं, बेशक अल्लाह ताला माफ करने वाला और बख्शने वाला है। जो लोग अपनी बीवियों से जिहार कर लें फिर अपनी कही हुई बात से रजू कर लें, तो इनके जिम्मे आपस में एक दूसरे को हाथ लगाने से पहले एक गुलाम को आजाद करना है। इसके जरिए तुम नसीहत किए जाते हो और अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम अमाल से बाखबर है। हाँ, जो शख्स ना पाए इसके जिम्मे 2 महीनों के लगातार रोजे हैं इससे पहले कि एक दूसरे को हाथ लगाएं, और जिस शख्स को ये ताकत भी ना हो इस पर 60 मिस्कीनों का खाना खिलाना है। ये इसलिए कि तुम अल्लाह की और इसके रसूल की हुक्म बरदारी करो, यानी बात मानो। ये अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हदें हैं और कुफार ही के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह अकबर कबीरा। जरा सा सोचिए कि अल्लाह ताला के इस बात कहने का यहाँ क्या मौका है। इससे आपको पता चलेगा कि कुफर सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच में नहीं है, बंदों के बंदों से मामलात के बीच में भी कई दफा इंसान कुफर के दर्जे पे पहुंच जाता है। بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل کیے جائیں گے جیسے کہ ان سے پہلے کے لوگ ذلیل کیے گئے تھے، اور بے شک ہم واضح آیتیں اتار چکے ہیں، اور کفار کے لیے تو ذلت والا عذاب ہے جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کر دے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے، جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ ہر چیز سے واقف ہے۔ اس آخری حصے کو بھی ذہن میں رکھیے گا۔ ایمان سے متعلق ایک آیت ہے، آیت نمبر 4، مجادلہ۔ اللہ کا ڈر اتنی بڑی نعمت ہے کہ صرف یہی گھروں کو ٹوٹنے سے بچا سکتا ہے۔ ہم نے آیت کے آخری حصے میں دیکھا اخصاہ اللہ ونسو، آپ کے پاس میرے پاس کوئی ریکارڈر ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے بولے ہوئے لفظوں کو ریکارڈ بھی کرے، پھر ان لفظوں کے پیچھے ہماری نیت کیا تھی، ہمارا ارادہ کیا تھا، سوچ کے بولے کہ منہ سے نکل گئے، بس ریکارڈ کر لیتا ہے، جیسے میرا ریکارڈر چھینک بھی ریکارڈ کر لیتا ہے، میری ٹنگ سلپس بھی ریکارڈ ہو جاتی ہیں۔ اللہ نے ایک مرد کے عورت کے بارے میں ایک جملے انتی علیہ کا زہری امی سے حقوق نسواں کی بات کر دی، یہ ہے ویمن رائٹس، کہ اب تم نے ایک عورت کا دل توڑا، چلو 60 روزے رکھ کر آؤ۔ اس سے یہ بھی سیکھیے کہ ایک لفظ بھی بولے تو منہ سے سوچ کے بولیں۔ سورہ قاف میں پڑھ کر آئے ہیں 26ویں پارے میں، مَا يَلْفِظُ مِّن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ۔ حضرت عمر اپنے دورِ خلافت میں کہیں سے گزر رہے تھے، ایک عورت نے ان کو روک لیا، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ حکمران جب بڑے کاموں پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ کتنے مصروف ہوں گے۔ کافی دیر لگی اس عورت سے باتیں سننے میں، کسی نے ان کو کہا حضرت عمر آپ اتنے مصروف انسان ہیں، آپ نے ایک عورت کے لیے اتنا وقت لگا دیا؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اس عورت کی بات کیوں نہ سنوں جس کی بات 7 آسمانوں پر اللہ نے سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک کا، تو پھر آج کے بعد یہ نہ کہیے گا کہ اللہ ہماری نہیں سنتا۔ فیتھ ان ایکشن کے پوائنٹس نوٹ کر لیں، میاں بیوی غصے کے وقت ایک دوسرے کو فوری جواب دینے کی بجائے خاموشی اختیار کریں۔ یہ جو ہے نا ایک چپ سو سکھ، یہ شوہر بیوی کے رشتے میں بڑی قیمتی ہے، کیونکہ طبیعت میں غصہ ہو اور زبان تیز ہو تو کئی دفعہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں، پھر مولویوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے بیگم کو غصے میں کہہ دیا طلاق، اب کیا کروں۔ وہ ایک مبلغ تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے کھانے میں نمک تیز ہونے کی وجہ پہ طلاق 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 ہی گردان بولتے ہیں، اور ابھی وہ بات کہہ کر سن کے پوری نہیں ہوئی ہوتی تو پھر مولویوں کے پیچھے ڈھونڈتے ہیں کہ میں نے 3 دفعہ طلاق کہہ دیا، اب ایک ہو گئی، 3 ہو گئی، میرا گھر بچا لو۔ تو سوچ کے بولو، یہ کوئی کھیل ہے؟ کبھی بھی اس لفظ کو شوہر بیوی کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے، نہ مذاق میں، نہ پیار میں، نہ کچھ۔ دوسری شادی کا لفظ کبھی نہ بولے، بعض مردوں کو عادت ہوتی ہے پھر لے آؤ دوسری، کچھ عورتیں بھی چڑھاتی ہیں، اچھا کر لے آپ پھر دوسری شادی، آپ کو میری قدر ہے۔ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ دس تھنگ، انتہائی نامعقول بات ہے۔ پھر کچھ کفارے ہمارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا لیتے ہیں، ان کو زحمت نہیں رحمت سمجھنا چاہیے۔ اب 60 روزے آپ کو بڑے لگے ہوں گے سن کر، لیکن پھر گھر ٹوٹ جاتا تو اس سے بڑی تباہی نہ آتی۔ تو یہ دین اسلام کا عدل ہے، اگر حق کا ساتھ نہیں دے سکتے تو حق کی مخالفت بھی نہ کیجئے تاکہ آخرت کی رسوائی سے بچ سکے۔ آگے دیکھیے رکو نمبر 2، 7 سے 13، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا علم رکھتا ہے۔ علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں کی اور زمین کی ہر چیز سے واقف ہے؟ 3 آدمیوں کی سرگوشی نہیں ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 کی مگر ان کا چھٹا وہ ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم اور نہ اس سے زیادہ کی سرگوشی ہوتی مگر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں بھی وہ ہوں، پھر قیامت کے دن انہیں ان کے اعمال سے آگاہ کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کانوں میں باتیں کرنے سے روک دیا گیا، نجوا، خسر پھسر، وہ پھر بھی اس روکے ہوئے کام کو دوبارہ کرتے ہیں، اور آپس میں گناہ کی اور ظلم کی زیادتی کی اور نافرمانی پیغمبر کی سرگوشیاں کرتے ہیں، یعنی جو باتیں آپ کے سامنے نہیں کر سکتے تھے وہ چپکے چپکے بعد میں کرتے تھے۔ اس دور میں ایسے کچھ لوگ تھے، یاد رکھیے کہ صحابہ نہیں تھے، یہ کھوٹے لوگ تھے جن کے دلوں میں ابھی تک اللہ کے رسول کی عزت اور ان کا مقام سمجھ نہیں آیا تھا ان کو، اور جب تیرے پاس آتے ہیں تو وہ تجھے ان لفظوں میں سلام کرتے ہیں جن لفظوں میں اللہ نے نہیں کہا۔ यानी टोन चेंज कर लेते हैं, मफहूम बदल लेते हैं और अपने दिल में कहते हैं कि अल्लाह हमें इस काम पर जो वो कहते हैं सजा क्यों नहीं देता, इनके लिए जहन्नम की सजा काफी है जिसमें ये जाएंगे, बस वो बहुत बुरा ठिकाना है। और आप पहली पुकार गिनते जाइए, 15 बार अल्लाह ने आपको इस बारे में पुकारना है, और वो क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा तनाजैतुम फला ततनाजौ बिलइस्मि वल उद्वानि व मासियति रसूल। ऐ ईमान वालो, तुम जब सरगोशी करो तो ये सरगोशियां जुल्म, ज्यादती और नाफरमानी पैगंबर की ना हो, बल्कि नेकी और परहेजगारी की बातों पर सरगोशी करो और इस अल्लाह से डरते रहो जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे, सिवाय इसके नहीं कि बुरी सरगोशियां शैतानी काम है कि जिससे ईमानदारों को रंज पहुंचे, गो के अल्लाह की इजाजत के बगैर वो इन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, और ईमान वालों को चाहिए कि वो अल्लाह पर भरोसा रखें। जहां 3 लोग हों वहां 2 लोगों को कान में बात करने की इजाजत नहीं हमारे दीन में, इतना ज्यादा ये इंसानी जज्बात की कदर करने वाला दीन है। और दोबारा पुकार है आपके नाम मेरे नाम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ीला लकुम तफस्सहू फिल मजालिस फ़फ़सहू यफ़सहल्लाहु लकुम व इज़ा क़ीला इन्शुज़ू फ़ान्शुज़ू यरफ़उल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम। बस इसको हाईलाइट करवाना चाह रही थी। अल्लाह बुलंद करेगा ईमान वालों के दर्जे जो तुम में से, और वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। ये जुमला नोट करें, इल्म अपने साहिब की शान बढ़ाता है, शर्त यह है कि उसको इल्म लेने के दौरान की जिल्लत और आजजी कबूल हो। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर। ऐ ईमान वालों, जब तुमसे कहा जाए कि मजलिसों में जरा कुशादगी पैदा करो तो तुम जगह कुशादा कर दो, अल्लाह ताला तुम्हें कुशादगी देगा, और जब कहा जाए कि उठ खड़े हो जाओ तो तुम उठकर खड़े हो जाओ, अल्लाह ताला तुम में से उन लोगों को जो ईमान लाए हैं और जो इल्म दिए गए हैं दर्जे बुलंद करेगा, और अल्लाह ताला हर काम से जो तुम कर रहे हो खूब वाकिफ है, यानी खूब खबरदार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजैतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैन यदै नजवाकुम सदका। ये आयत मनसूख आयतों में जिसका तذکرہ शुरू में किया गया, क्या ऐ मुसलमानों, जब तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सरगोशी करना चाहो तो अपनी सरगोशी से पहले कुछ सदका दे दिया करो, ये तुम्हारे हक में बेहतर और पाकीज़ा तर है। हाँ, अगर ना पाओ तो बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। क्या तुम अपनी सरगोशी से पहले सदका निकालने से डर गए, यानी फीस रखी गई तो तुम छोड़ गए बात करना? बस जब तुमने ये ना किया और अल्लाह ने भी तुम्हें माफ फरमा दिया, तब बखूबी नमाजों को कायम रखो, जकात देते रहा करो और अल्लाह ताला की और इसके रसूल की ताबेदारी करते रहो। तुम जो कुछ भी करते हो इस सब से अल्लाह खूब खबरदार है। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक, मुजादिला 9, एलानिया हो या सरगोशी हो, जरूरी है कि बात भली हो, कानों में बुरी बात नहीं करनी और खुलकर भी सामने महफिलों में बुरी बातें नहीं करनी। और आयत 11, जो दूसरों को आसानियां देते हैं अल्लाह ताला उनको आसानियां देता है। आयत 12, निफाक का इलाज इनफाक, और अल्लाह सुबहान ताला ने यहाँ हस्बुहुम जहन्नुम की धमकी दी है आयत 8 में, तो लिख लीजिए अल्लाह की तरफ से धमकी एक वक्त तक ही आती है, जब बंदा कान ना खोले तो वो उस नोटिफिकेशन की तरह पलट जाती है जिसको आप क्लिक नहीं करते। फिर अल्लाह कहते हैं अब तुम्हारे दिल सख्त होंगे, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारा रब तुम्हें बार बार पुकारता है। यहाँ सरगोशियों की बात हुई तो नोट कीजिएगा कि वो रब जो सरगोशियां जानता तो एलानिया गुनाहों को कैसे नहीं जानेगा। वो लोग जो गंदी फिल्में बनाते, बेहूदगी फैलाते, फैशन के नाम पे, दौलत के नाम पे अपने जिस्म का इजहार करते, और फिर जो लिखते और जो बोलते और गंदा लिटरेचर है, फिर अल्लाह ताला उनके साथ कयामत के दिन क्या करेगा? अल्लाह को बिल्कुल भी गवारा नहीं है ऐसे बुरे काम। फिर आप देखिए जो खूबसूरत आयत थी इसमें वो क्या थी, तफस्सहु फिल मजालिस आयत 11 में, जब दिल में जगह हो तो जगह भी बन ही जाती है। हमारे कल्चर में कहते हैं कि जगह दिल में होती है, गाड़ी में बैठ जाएंगे, और हमारे माशाल्लाह मुसलमानों में एक गाड़ी में से 18 18 लोग निकलते हैं, निकलते ही आते हैं, निकलते ही आते हैं, कोई पाँव में घुसा हुआ है, कोई आगे है, शुक्र करे ड्राइवर के पाँव में कोई बचा नहीं, कई लाड से छोटे बच्चे को अपनी गोद में भी बिठा लेते हैं, लेकिन इसमें अदब है। और वो क्या है, बहुत बड़ा अदब है ये मेरे और आपके लिए असल में, जो इल्म की महफिले से जाके बैठते हैं। और वो क्या है कि जगह में कुशादगी के साथ आने वालों को पहले से मौजूद लोगों के चेहरों पर भी कुशादगी दिखनी चाहिए, स्माइली फेस। दीनी महफिलों में सारे वो नहीं आते जो दीन के तलबगार होते हैं, कुछ को कोई जबरदस्ती ले आता है, कोई दुआ के नाम पे आते हैं, कुछ बेचारे खाने के लालच में भी बुला लिए जाते हैं, कुछ ऐसी राह चलते आते हैं। लेकिन याद रखिए, इस महफिल में आने वाला महरूम नहीं रहता, हत्ता कि अल्लाह उसकी भी दुआएं वैसे ही कबूल करता है जैसे कि दूसरों की करता है, एक बड़ी मारूफ हदीस है। लेकिन होता क्या, बस दीनदार रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं, वो नए आने वालों को अपनी निगाहों में एक आलिम फाजिल देखना चाहते हैं, और उस जगह का तकद्दस उनको इतना अजीज होता है कि वो उसका दिल तोड़ देते हैं, उसके हुलिये पे, उसकी जात पे, उसकी बात पे, उसके रवैये पे ऐसी तनकीद करते हैं कि वो दोबारा नहीं आता। मेरी नजर में दीनी महफिल कौन सी है जहां आने के बाद वहां से वापस जाने को दिल ना करे? क्या खुशी से फूलों के गुलदस्ते लेकर अब रात के इस्तकबाल के लिए खड़े होते हैं? दीन के काम पे जो एडमिनिस्ट्रेशन पे लोग होते हैं, इंतजामिया के लोग, और स्पेशली रिसेप्शन पे, पहला बंदा जिससे किसी का सामना होना है उसके चेहरे पे से स्माइल जानी ही नहीं चाहिए, फ्रेंडली स्माइल और मुहज्जब, ना बहुत बड़बड़ कर बातें करे और ना आते जल्दी करो साइन करे, जूते इधर उतारे। हमेशा याद रखिए, हमें अपने पोस्चर से लोगों को मोहब्बत देनी चाहिए। आप बैठे हैं, जगह तंग है, थोड़ा सा हिल जाइए, कोई बुजुर्ग आ रहा है उसको जगह दे दें, कुर्सियां थोड़ी हैं आप हट जाएं। और अगर किसी जवान बच्ची को कुर्सी पे देखे तो ये ना कि उठो उठो इधर से निकलो, क्या पता उस बेचारी का बैक को कोई प्रॉब्लम हो सकता है वो किसी और ही तकलीफ में हो। नए आने वालों को ऐसे डील करें जैसे कोई बच्ची का रिश्ता देखने आने वालों को डील करता है, ये हमारे कल्चर की बातें हैं। और दीनदारों को ये सब्र करना पड़ेगा, उनके कपड़े भी बुरे नहीं है ना, आने दीजिए, सर भी नहीं ढका कोई बात नहीं, उनकी टांगे भी खुली हैं कोई बात नहीं, बाजू भी खुले हैं कोई ना, मेरे पे 10 फतवे लगा देंगे आप मेरी ये बातें इतनी सी काट के कि देखे ये कैसी बेइज्जती कर रही है दीन की महफिल की। लेकिन बात तो पूरी सुनिए, डॉक्टर की दुकान पे सेहतमंद लोग आते हैं कि बीमार, और बीमार लिख कर रखा दे कोई बीमार ना इधर आए तो बंद हो जाएगा उसका क्लिनिक। हमेशा समझिए, ये जगह तो माँ का प्यार, बाप की शफकत, भाई की कह लीजिए केयर, और इससे भी बढ़ के शौहर और बच्चों वाला जो एक दूसरे का ख्याल रखना है ना, उससे ज्यादा केयरिंग होनी चाहिए। कोई काउंसलिंग के लिए आएगा, कोई आपको अपना दुख सुनाने आएगा, कोई बच्चों के रिश्तों का थका मारा परेशान आएगा, कोई अपनी बेटी के लिए मशवरा लेने आएगा। आप आज से अपने लिए नियत कर, लोग आपके पास आके कुछ इल्म ले ना ले कोई बात नहीं, बड़े लोगों से मिल जाएगा, तसल्ली लेके जाए, प्यार लेकर जाए। और दीन वालों का अखलाक बड़ा खूबसूरत होना चाहिए, और अल्लाह जानता है कि नूरुल कुरान के हर एडमिन, हर जिम्मेदार को ये बात जुबानी याद है। माशाल्लाह जी, आप नाम भी लेते हैं तो जी के साथ, रोल कॉल भी लगाते हैं तो जी के साथ, डबल लफ्ज बोलने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को हमारा अखलाक लेकर आएगा। नबी ने लोगों के दिल अखलाक से जीते थे, अल्लाह हमारे भी अच्छे कर दे। और जो जन्नतियों का अखलाक होगा ना, उसको भी याद रखिए, जो दुनिया में हमारी आते होनी है ना, कियामत के दिन हमें उन्हीं पे उठाया जाएगा। अगर आप यहाँ खुश अखलाक है ना तो वहां भी होंगे, ये नहीं हो सकता यहाँ आप माथे में बाल चढ़े में तेवरियां चढ़ी हैं, दीनदार हो गए हैं ना, नेक हो गए हैं, रिलैक्स नहीं हो सकते तो पता नहीं वहां जाकर क्या करें। जन्नत का जो असल हुसन है ना, वहां के लोग हैं, उनको दुनिया में ट्रेनिंग सेशन से अल्लाह गुजार के वहां ले जाएगा, वरना तो एक बंदा चिड़चिड़ा सा जन्नत में आ गया तो आपका सारा मजा ही किरकिरा हो जाना है। अल्लाह ताला हमें बेहतरीन तरीके से रखे, लेकिन ये सारा अखलाक आपका औरतों के साथ होना चाहिए, ये भी जरा सोचिए, मर्दों का मर्दों से और औरतों का औरतों से, उलट ही ना मानी लेके जाइए यहाँ से। फिर आगे देखिए, मोमिन के जज्बात इस्लाम से मुंसलिक होते हैं जबकि मुनाफिक के दुनिया से मुंसलिक होते हैं, यानी मोमिन और मुनाफिक का बड़ा फर्क। कभी आगे और भी बातें आने वाली है निफाक पे, इसलिए याद रखे, मुनाफिक की इमोशनल अटैचमेंट नहीं होती इस्लाम के साथ और इस्लाम दिखाने वाले के साथ, मोमिन की अटैचमेंट होती है, इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको अपना अपना लगता है, इसी वजह से फिर वो दिल की बातें दूसरी तरफ हो जाती है। मोमिन इस्लाम के लिए बावफा और मुनाफिक बेवफा होता है। आयत 12 में अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने पे क्यों रोका? क्या वो बहुत बड़े थे, प्रोटोकॉल चाहिए, हटो बच्चों के नारे? नहीं, याद रखिए कि अल्लाह ताला गैर संजीदा लोगों को छांटना चाहता था ताकि सिर्फ मुखलिसीन और दिल से और मिशन से करीब लोग ही नबी के पास रहें और दूसरे लोग उनका वक्त जाया ना करें। आज यही हुक्म दीनी रहनुमाओं के लिए भी है। फेथ इन एक्शन क्या है? कि महफिल में किसी अच्छी बात की तरगीब दिलानी है और सरगोशी करनी है तो की जा सकती है, लेकिन किसी की दिल आजारी नहीं की जा सकती। गुनाहों के बावजूद फौरी पकड़ ना होने को अल्लाह ताला की तरफ से गनीमत जानकर अपनी इसलाह कर लेनी चाहिए। महफिलों में हर आने वाले का खुश दिली से इस्तकबाल करना चाहिए और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आगे है जी रुकू नंबर 3, 14 से 22। हिस्बुल्ला और हिस्बु शैतान। अलम तरैलल्लज़ीना तवल्लौ कौमन गदिबल्लाह। क्या आपने इन लोगों को नहीं देखा जिन्होंने इस कौम से दोस्ती की जिन पर अल्लाह ताला गजबनाक हो चुका है? ना ये मुनाफिक तुम्हारे ही हैं ना ही उनके हैं, बावजूद इल्म के फिर भी झूठी कसमें खा रहे हैं। अल्लाह ताला ने इनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। जो कुछ ये कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी कसमों को ढाल बना रखा है और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं। इनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। इनके माल और इनकी औलाद अल्लाह के हाँ कुछ काम ना आएंगी। ये तो जहन्नमी है, हमेशा ही इसमें रहेंगे। जिस दिन अल्लाह ताला इन सब को उठा खड़ा करेगा तो ये जिस तरह तुम्हारे सामने कस्में खाते हैं अल्लाह ताला के सामने भी कस्में खाने लगेंगे और समझेंगे कि वो भी किसी दलील पर हैं। यकीन मानो कि बेशक वही झूठे हैं। इन पर शैतान ने गलबा हासिल कर लिया है और इन्हें अल्लाह का जिक्र भुला दिया है। ये शैतानी लश्कर है, कोई शक नहीं कि शैतानी लश्कर ही खसारे वाला है। बेशक अल्लाह ताला की और इसके रसूल की जो लोग मुखालफत करते हैं वही लोग सबसे ज्यादा जलीलों में हैं। अल्लाह ताला लिख चुका है कि बेशक मैं और मेरे पैगंबर गालिब रहेंगे। यकीनन अल्लाह ताला जोर आवर और गालिब है। अल्लाह ताला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखने वालों को आप अल्लाह और इसके रसूल की मुखालफत करने वालों से मोहब्बत रखते हुए हरगिज ना पाएंगे, गो के वो इनके बाप या इनके बेटे या इनके भाई या इनके कुंबे कबीले के अजीज ही क्यों ना हो। यही लोग हैं जिनके दिलों में अल्लाह ने ईमान को लिख दिया। अल्लाह हमारे दिलों में ईमान को लिख दे। और जिनकी ताईद अपनी रूह से की है और जिन्हें इन जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बह रही हैं जहाँ ये हमेशा रहेंगे, अल्लाह ताला इनसे राजी है और ये अल्लाह से राजी। रदी अल्लाह अन्हु व रदुन हर पारे में आ रहा है। 26वें पारे में भी आपने पढ़ा, अभी यहाँ भी देख रहे हैं। सहाबा को बार बार सर्टिफिकेट मिल रहा था रजामंदी का, अल्लाह ताला आपको और मुझे भी अता करे। ये अल्लाह का लश्कर हैं, आगा रहो, बेशक अल्लाह के गिरोह वाले ही कामयाब लोग हैं। एक आयत ईमान से मुतल्लिक, 22 मुजादिला, दोस्ती और दुश्मनी सिर्फ अल्लाह के लिए। अलबिला वलबरा अकीदे का हिस्सा। अल्लाह के दुश्मन से दुश्मनी करना फर्ज है, अल्लाह के दोस्त से दोस्ती रखना लाजिम है। हिजबु शैतान की बात हुई, कौन होता ये कोई बाहर का गैंग नहीं है। शैतान से भड़कर बाज दफा हम खुद अपने दुश्मन होते हैं। कब? जब हम अल्लाह की नाफरमानियों में वक्त, माल, एफर्ट्स और अपनी स्किल्स लगा देते हैं। फिर इसी तरह से एक बात जहन में रखिएगा कि जितना ज्यादा आपकी मेरी जिंदगी में अल्लाह की मोहब्बत बढ़ती जाएगी ना, उतना ज्यादा हम शैतान से दूर होते जाएंगे। फिर इसी तरह हमारे लफ्ज, अब ये सूरत के अंदर जो हमें पैगाम मिला है ना, कभी कभी स्टूडेंट के नंबर्स कट जाते हैं कुछ गलत लिखने से। इसको कहते हैं नेगेटिव मार्किंग। आज से अपने लिए एक चेक पॉइंट बनाइए, मेरी जुबान से निकले हुए कौन कौन से अल्फाज हैं जो कयामत के दिन नेगेटिव मार्किंग करवाएंगे, उनको निकाल दीजिए। बहुत बेतुका हम बोलते हैं, बहुत एक्स्ट्रा बोलते हैं, कुछ बोलते कम है लेकिन जो बोलते हैं वो भी बहुत ही बुरा बोलते हैं, कुछ बहुत ज्यादा बोलते हैं लेकिन उसकी इतनी गलतियां नहीं होती। अब देखिए जितना लिखेंगे उतनी गलतियों के इम्कान ज्यादा है ना, तो वो भी गलत है। और जो लिखा ही ना उसको नंबर कहाँ से मिलेंगे? तो वमन अहसनु कौलम मिम्मन दअ इलल्लाह। जो अल्लाह की तरफ बुलाए वही असल में बेहतर होगा। और इसी तरह से हमें इंशाल्लाह कयामत के दिन अपने आमाल को अल्लाह के यहाँ बड़ा करवाना है। अब देखिए कि ये ज़िहार का कानून क्या था कि जुबान से निकला एक जुमला, अंती अलई या कजहरी उम्मी, एक जुमला था, शोहर बीवी को काट रहा है। इसी तरह कभी कभी कह लीजिए कि बेख्याली कह ले या केयरलेस एटीट्यूड कह ले, कलमा कुफर का बनता है जो हमें अल्लाह से काट देता है। तो शोहर बीवी के ताल्लुक को सामने रखकर हर रिश्ते पे रखिए, भाई बहन है ना, कोई बात बुरी लग जाती है मत कीजिए। एक अपने लिए नोट करें, कभी लोगों के लफ्ज ना पकड़े, लोगों की बातें ना पकड़े। उस वक्त ये कह दिया, दिल में ग्रह लेकर बैठे भाई बेचारे को बता भी नहीं, वो आपको याद है वो गई थी ना, तो भाई ने ये बच्चे को कह दिया तो मुझे नहीं अच्छा लगा, ये बहन से ये फलां वक्त पे कहा था उसने ये बात दूसरे को बता दी। वल्लाही रिश्तों में बातें ना पकड़े, छोटी छोटी बातों पे लोगों को मत पकड़े। अल्लाह आपके लिए आसान हिसाब करेगा आपका जब आप अल्लाह की अदालत में होंगे। जो लोगों का हिसाब सख्त कर देता है ना, उसका भी हिसाब सख्त होगा। तो अपने आप को आसान रखें, कोई बात नहीं, कुछ और भी है तो कह लीजिए, कुछ और भी सता लीजिए, आपका जो दिल चाहे वो कीजिए, मैं तो वाली रब्बी का फसबिर पे अमल करूंगी और करूंगा। इजाजत दीजिए लोगों को आपको बुरा कहें भला कहें, और आप अल्लाह के लिए सब्र करते जाएं करते जाएं करते जाएं, इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका दिल खट्टा नहीं होगा। रिश्ते होते ही इसलिए कि हम उन रिश्तों में पढ़कर अल्लाह का कुर्ब पा सके। और इसी तरह से फिर आपको इसमें क्या पता चला, कतब फी कुलूबिहिमुल ईमान, मोमिन के दिल पर ईमान लिखा होता है। लोग तो कागजों और कलमों में लिखते होंगे ना, कापियों पे लिखते हैं कुछ, मोमिन के दिल पे ईमान लिखा होता है। अल्लाह करे कि मेरे आपके दिल पर ईमान लिखा जाए, और जिसके दिल पर ईमान लिखा गया अल्लाह ताला उसको दूसरों की बातों पे थाम लेगा और वो गलत बात कभी भी अपने मुंह से नहीं निकालेगा। फेथ इन एक्शन, कस्में खाकर खुद को सच्चा साबित करने की बजाय अपने किरदार को मजबूत बनाना है, अपनी दोस्ती का मेयार हक को बनाना है, जाती मुफादात को नहीं, नेकियों पर जमने के लिए नेक और सालेह लोगों की सोहबत इख्तियार करनी है। सूरत पूरी हो गई, आप उस बात तक पहुंचे जिसका इशारा दिया था शुरू में। इस सूरत की हर आयत में लफ्ज अल्लाह था, तो बड़ा सोचिए फिर इस सूरत को पढ़कर आप कितना अल्लाह के करीब होंगे। अल्लाह मुझे आपको अपना कुर्ब अता फरमा दे।